سامعین ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں زوشان ہاشمی جو کہ سڈنی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں, سڈنی یونیورسٹی میں پوسٹ گریجویٹ اسٹوڈنٹ کی ایک تنظیم سے وابستہ ہیں. تو ہم چلیں ہم زوشان سے ہی کہتے ہیں کہ وہ اپنا تعارف کرائیں کہ وہ کیا کیا کرتے ہیں. تو زوشان کچھ بتائیے اپنے بارے میں.
جی بہت بہت شکریہ مجھے بلانے کے لیے. آج سب سے پہلے تو میں کیا کرتا ہوں, میں سوپرا کے ساتھ ڈائریکٹر آف اسٹوڈنٹ پبلیکیشنز ہوں.
سوپرا سڈنی یونیورسٹی,
تو سوپرا سڈنی یونیورسٹی پوسٹ گریجویٹ ریپرزینٹیو ایسوسیشن ہے. تو بیسکلی ہم لوگ کیا کرتے ہیں سوپرا میں ہے کہ ہم کوئی بھی پوسٹ گریجویٹ اسٹوڈنٹ ہو جو ماسٹرز یا پی ایچ ڈی لیول پہ پڑھائی کر رہا ہوتا ہے سڈنی یونیورسٹی میں, میرے خیال میں تقریباً 20,000 اسٹوڈنٹس ہیں, تو ان کی ہم مدد کرتے ہیں اگر کوئی بھی ان کی یونیورسٹی میں مشکل پیدا ہو یا کسی بھی طریقے سے ان کو ہم مدد کر سکیں, جیسے کہ لیگل ایڈوائس ہو, رینٹل اسسٹنس چاہیے ہو. میں مثال دیتا ہوں, اگر ان کے امتحان میں کوئی اچھی گریڈ نہیں آئی اور ان کو لگا کہ انہوں نے اس سے بہتر پڑھائی کی تھی, بہتر تیاری کی تھی, تو وہ بھی ہمارے پاس آ سکتے ہیں اور ہم ان کی مدد کرتے ہیں. تو
اچھا, یہ تو بہت اچھی. اور یہ جو اسٹوڈینٹ سپرا ہے یہ تمام اسٹوڈینٹس کے لیے ہے, ظاہر ہے یہ صرف آپ ہی, مطلب جو اوورسیز اسٹوڈینٹس ہوں یا وہ ہوں ان کے لیے سے ہی تک محدود نہیں ہے. تو یہ کیسے آیا, کیونکہ ہم بہت زیادہ ایس نہیں دیکھتے کہ ہمارے جو اسٹوڈینٹس ہوں جن کا یہاں سے خاص طور پہ آسٹریلیا سے بیک گراؤنڈ نہ ہو. آپ کا بیک گراؤنڈ ایک پاکستان سے, آپ آسٹریلین بھی,
جی جی,
تو لیکن وہ اس قسم کی سرگرمیوں میں حصہ لیتے نظر نہیں آتے. تو آپ کس طرح سے اس کی طرف مائل ہوئے کہ جو ایک اسٹوڈنٹ, ہم سیاست کا لفظ تو استعمال کر سکتے ہیں, اسٹوڈنٹ سیاست کی طرف, تو یہ کس طرح سے خیال آیا کہ ہم یونیورسٹی کی سطح پہ, جس میں آپ پوری یونیورسٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہوں, یونیورسٹی کے تمام پوسٹ گریجویٹ اسٹوڈنٹس کو ریپرزینٹ کر رہے ہوں, اور آپ کی ایک دوسری ساتھی بھی ہیں جو کہ ان کا تعلق بھی پاکستان سے, تو آپ لوگ کس طرح سے آپ کو خیال آیا کہ ہمیں اس مین اسٹریم کی طرف جانا چاہیے؟
بالکل, تو اس میں دو تین چیزیں تھیں. پہلے تو مجھے یہ بڑا لگا کہ جیسے آپ نے کہا, کوئی اسٹوڈنٹس, بہت کم اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جن کا نان آسٹریلین بیک گراؤنڈ ہو جو اس چیز میں جاتے ہیں. تو بس بائی چانس یہ ہوا کہ میرے تین چار دوست تھے جو اس میں رن کر رہے تھے, اور انہوں نے مجھ سے آ کے پوچھا کہ تم انٹرسٹڈ ہو, کیونکہ میں نے اس چیز پہ پہلے ڈائریکٹلی سیاست میں نہیں, مگر میں آرٹیکلز لکھتا ہوں اور یہ اور وہ وغیرہ کرتا ہوں میں. تو انہوں نے پوچھا کہ اگر تم انٹرسٹڈ ہوگے اور اگر تم الیکٹ ہو جاؤ گے تو ایک رول ہے ڈائریکٹر اسٹوڈنٹ پبلیکیشنز کا, وہ بھی ہم تمہیں الیکٹ کرا جا سکتا ہے اگر کاؤنسل میں تمہاری الیکشن ہوتی. تو میں نے کہا بالکل میں انٹرسٹڈ ہوں گا. دوسری چیز یہ تھی کہ مجھے ہمیشہ سے انٹرسٹ ہے, پیشن ہے سیاست میں انوالو ہونا, اور اس سے زیادہ میں ایک پوسٹ گریجویٹ اسٹوڈنٹ ہوں, میں نے انڈر گریجویٹ بھی آسٹریلیا میں کی تھی, اور مجھے لگتا ہے کہ الگ الگ قسم کے لوگ ہونے چاہیے سیاست میں, بے شک کہ صرف یونیورسٹی کی سیاست ہو مگر ان کے بیک گراؤنڈ کہیں اور کے ہوں, وہ کوئی اور زبان بولتے ہوں. بہت ضروری ہے کہ یہ ریپرزنٹیشن ہو, ورنہ جو آپ کے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ ہیں یا نان آسٹریلین بیک گراؤنڈ کے اسٹوڈنٹس ہیں, ان کو کون ریپرزینٹ کرے گا؟
تو زوشان, تو کیا سمجھتے ہیں کہ جو باہر سے جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے, ان کے لیے وہ کیا مشکلات ہیں کہ وہ کس طرح سے ایک وائڈر سوسائٹی کے ساتھ یہاں پہ, جس طرح سے آپ نے ایک آگے بڑھ کے حصہ لیا, کس طرح سے اپنے آپ کو کنیکٹ کر سکتے ہیں, کیا چیلنجز نظر آتے ہیں جہاں آپ کا ڈے ٹو ڈے واسطہ پڑتا ہے؟ کیونکہ یہ جب آپ وائڈر سوسائٹی کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں اس طرح, اسی طرح سے آپ کے آگے جا کے آپ کے کریئر کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں, کہ بالکل. آپ کے لیے جابس کی بھی آسانیاں ہوتی ہیں کیونکہ آپ یہاں کے لوکل کلچر کو سمجھتے ہیں, آپ کو پتا چلتا ہے کہ کس طرح سے آگے آپ کو کیا چیزیں کرنی چاہیے. تو وہ ان کے لیے کیا کہیں گے؟
بالکل, دیکھیں میں خود, مطلب 10 سال ہو گئے مجھے آسٹریلیا میں, اس سے پہلے میں دبئی میں رہا کرتا تھا. تو میں بھی جب شروع میں آیا تھا, جیسے کسی بھی اسٹوڈنٹ کو لگتا ہے, کافی ایک الگ معاشرہ ہے, کافی ایک الگ زندگی ہے, لائف سٹائل ہے, جس طرح سے آپ لوگوں سے پیش آتے ہیں, ہر چیز کافی فرق ہے اس میں, جہاں سے بھی آپ ہوں, پاکستان میں بھی اس سے بہت زیادہ فرق ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے, اور جو میں نے خود مطلب کیا ہے, جو سب سے ضروری چیز ہے وہ ہے کہ آپ دوسروں سے ملیں, چاہے وہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ ہوں چاہے وہ ڈومیسٹک اسٹوڈنٹ ہوں, बस वो कोई और मुल्क के हों और वो कोई और फॉर एग्जाम्पल डिग्री कर रहे हों, किसी और एक्सपीरियंस से आए हों, क्योंकि इसी के थ्रू आप सीखते हैं कि क्या दूसरे लोगों की जिंदगी में क्या हो रहा है, उनके एक्सपीरियंसेस कहाँ क्या हैं, वो कहाँ से आए हैं। और अगर आप ये नहीं कर रहे तो मेरा पर्सनल व्यू ये है कि आप आए क्यों यहाँ।
आपका कहना है कि एक अपना गेथो बना के ना रहें बल्कि मिक्स हों।
बिल्कुल, क्योंकि उसी के थ्रू आपको मौका मिलता है, जैसे आप कह रहे थे, नई चीजें करने का। तो मैं मिसाल देता हूं कि मैं लोगों से मिला, मैंने मुलाकातें की, उसके थ्रू ही मुझे सुप्रा में आने का मौका मिला। अक्सर क्या होता है, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो पाकिस्तान से आए हैं, बहुत सारे दोस्त हैं जो पाकिस्तान से अब आके यहाँ बहुत अरसे से रह भी रहे हैं, और उनमें से काफी ऐसे भी लोग हैं जो बस दूसरे पाकिस्तानियों के साथ ही रहते हैं। इसमें चक्कर क्या होता है कि आपको दूसरे लोगों से मिलने की मौका नहीं मिलता, और इस वजह से आपको नए एक्सपीरियंसेस नहीं मिलते और आपको नई चीजें करनी नहीं मिलती। तो सबसे जो चैलेंजिंग चीज है मेरे ख्याल में ये है कि अक्सर हमारे लोगों को, या जो पाकिस्तानी ओरिजिन के लोग होते हैं और दूसरे भी मुल्क से होते हैं साउथ एशिया में, उनको लगता है कि हम दूसरों से बात नहीं कर सकते, हमारी अंग्रेजी अच्छी नहीं है या हमें एक तरीका नहीं आता। मगर ऑस्ट्रेलिया में मुझे 10 साल में ये तो मतलब कंफर्म हो गया है कि लोगों को कोई इशू नहीं है किसी और से बात करने की।
लोगों की रिजर्वेशन क्या अपने कल्चर के हवाले से है कि समझते हैं कि हमारे कल्चर से मैच नहीं हो रहा, या जो उनके बिलीफ सिस्टम हो या जिस वजह से?
बिल्कुल, ये दोनों चीजें इसमें पार्ट प्ले करती हैं, मगर इसके ऊपर से ये भी होता है कि अक्सर आसानी होती है। अगर आप अपने लोगों में ही हैं तो कोई इशू नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कुछ नया आपको करने। देखें, हर इंसान जो होता है, कोई भी इंसान होता है, जनरली उसको चेंज नहीं पसंद, तब्दीली एक तरह से अच्छी नहीं लगती क्योंकि आसान नहीं होती। मगर अगर आप वो एक दो स्टेप्स ले लें तो आगे आपके लिए बहुत सारे एवेन्यूज खुलते
हैं। अच्छा, ये बताएं कि ये आपने बताया कि मेन स्ट्रीम का, इसमें जॉब्स की तरफ किस तरह से फायदा हो सकता है?
देखिए, नेटवर्किंग आजकल की दुनिया में तो सबको पता है कि नेटवर्किंग की ही वजह से मौके मिलते हैं आपको। अगर आपने जाके स्टूडेंट्स, अलग अलग स्टूडेंट से मुलाकात नहीं की, अलग अलग लोगों से मिले नहीं, तो आपको अलग जॉब्स के बारे में पता कैसे चलेगा। एक मेरा दोस्त था पाकिस्तान से, वो आया था, उसने जाके कोई सोसाइटीज ज्वाइन की, ये किया वो किया, तो आज क्या हुआ, उसने डिग्री खत्म की, उसका एक दोस्त था, उसके दोस्त कोई कंपनी में काम करता था, उसने उसको जॉब में लगा दिया। तो यही मौके मिलते हैं।
नॉन पाकिस्तानी दोस्त,
उसका दोस्त नॉन पाकिस्तानी था। जी,
मौसीकी से भी आपको कुछ लगाव है?
जी, मैं बस कभी कभी मौका मिलता है तो जरा मौसीकी रैप म्यूजिक बनाता हूँ।
अच्छा,
और बहुत अरसे से मैं पहले रॉक बैंड में भी हुआ करता था।
तो जुशान, हम बात कर रहे थे म्यूजिक पे, लेकिन बिफोर हम इससे पहले दोबारा गुफ्तगू म्यूजिक से जोड़ें, आप जहाँ तक मुझे पता है कि आप सिडनी यूनिवर्सिटी में एक फोरम का भी इनेकाद करते हैं जिसका नाम है साउथ एशिया स्टडी ग्रुप, कुछ इसके बारे में बताएं कि इसके क्या मकासद हैं।
बिल्कुल, मेरे साथ तकरीबन 2 साल पहले क्या हुआ कि मैं एक पीएचडी स्टूडेंट से मेरा इंट्रोडक्शन हुआ, मैं वाकिफ हुआ, तो उनको एक इंटरेस्ट था, आप शायद जानते हैं हुसैन नदीम एक पीएचडी कैंडिडेट हैं सिडनी यूनी में, तो उनका एक इंटरेस्ट था कि एक फोरम, एक रिसर्च ग्रुप शुरू किया जाए, तो उसमें मैं भी इन्वॉल्व हो गया और उनके साथ मैंने मिलके ये स्टडी ग्रुप लॉन्च किया मई 2015 में। हमारी बेसिकली क्या उम्मीद थी कि साउथ एशियन सियासत पे, इकोनॉमिक्स पे, सोशियोलॉजी पे, हर तरीके के एकेडमिक डिसिप्लिन को यूनिवर्सिटी में लाएं और एकेडमिक्स को मौका दें इस पे बात करने, क्योंकि जैसे आप अगर देखें अमेरिका में, कनाडा में, इंग्लैंड में, वहाँ हर यूनिवर्सिटी में साउथ एशिया पे काम हो रहा है, फोरम्स हैं, सेंटर्स हैं जहाँ साउथ एशिया पे बात होती है, ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। तो ये हमने मई में जब शुरू किया 2015 में, उसके बाद से हमने काफी एकेडेमिक्स को कनेक्ट किया है, हमने बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस की हैं, सिडनी की पहली।
कुछ खास बताइएगा जो लोग आए हों।
बिल्कुल, हम जनरल एहसानुल हक को लाए थे 2015 नवंबर में, जो एक्स डीजी आईएसआई थे वो, बल्कि वो डीजी आईएसआई थे 9/11 के वक्त, तो उन्होंने काफी, उनकी काफी नॉलेज है, उनको हम लाए थे। तो हम पाकिस्तान समिट कराई, हमारे साथ एक सिडनी यूनी में प्रोफेसर हैं डॉक्टर अहमर महबूब, तो वो भी हमारी काफ़ी मदद करते हैं। हमने 2016 में विमेन ऑफ साउथ एशिया समिट कराई, जो जेंडर इश्यूज पे साउथ एशिया में के बारे में एकेडेमिक्स आए थे, पीएचडी स्टूडेंट्स आए थे सारे मुल्कों से, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह, और उन्होंने आके बात की। और फिर अक्टूबर 2016 में हमने इंडिया समिट भी कराई, जो हम इंडिया से एक पॉलिटिशियन को लाए, सियासतदान को। और अभी हम फिल्म सीरीज करा रहे हैं, जो 21 सितंबर से शुरू हो रही है, और उसमें हम शर्मीन उबैद चिनॉय, जो पाकिस्तानी ऑस्कर विनर हैं, उनकी दो डॉक्यूमेंट्रीज सेविंग फेस और प्राइस ऑफ फॉरगिवनेस अ गर्ल इन द रिवर दिखा रहे हैं। तो वो फ्री एक इवेंट हो रही है, और उसके बाद फोर्टनाइटली हम लोग साल के एंड तक फिल्में दिखाते रहेंगे।
सिडनी यूनिवर्सिटी से बाहर के जो लोग हैं या जिनका ताल्लुक, जो अपनी तालीम ख़त्म कर चुके हैं, वो भी आना चाहें, देखना चाहें, आपके फोरम्स का हिस्सा बनना चाहें, तो किस तरह से वो बन सकते हैं?
ये तो बहुत आसान चीज़ है, आप हमारी मेलिंग लिस्ट पे साइन अप कर सकते हैं। उससे ज़्यादा आसान है कि हमारा फेसबुक पेज है, साउथ एशिया स्टडी ग्रुप एट द यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी, उस पे हमें कॉन्टैक्ट कर लीजिए, और उसके थ्रू आप हमसे राबता रख सकते हैं। और हमारी इवेंट्स भी सारी ओपन टू ऑल होती हैं, चाहे आप बाहर कोई मुल्क से भी आ रहे हैं।
तो ये मतलब कहीं से भी उनका ताल्लुक हो, सिर्फ ये कि आपको सर्च करें साउथ एशियन स्टडी ग्रुप
जी,
और वो आपसे रابطے में हो सकते हैं। और जब भी कोई इवेंट हो रहा है, जैसे आपने बताया कि फिल्म फेस्टिवल तो ना कहा जाए, जब फिल्म आप दिखा रहे हैं
जी,
फ्री स्क्रीन है, उसके लिए लोग आ सकते हैं। और इसके अलावा भी जो ऐसे जो टॉपिक्स हैं जो कि इंटरेस्ट के बनते हों, तो लोग आ सकते हैं, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सामीन, आप में से अगर किसी का ऐसा इंटरेस्ट हो जिन टॉपिक्स के अंदर, तो आप वेबसाइट पे देखिए साउथ एशियन स्टडी ग्रुप, और आप उनमें जाके हिस्सा ले सकते हैं, सुन सकते हैं कि लोग क्या कहते हैं, और अपनी अच्छा ये बात तो हुई। इसके अलावा आप लिखते लिखाते भी हैं
जी,
तो क्या लिखते हैं?
तो मैं बेसिकली करंट अफेयर्स पे लिखता हूँ, यूजुअली अंग्रेज़ी में मैं ओपिनियन आर्टिकल्स लिखता हूँ। मैने एक्सप्रेस ट्रिब्यून के लिए लिखा हुआ है
पाकिस्तान में ज़्यादातर, या
ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान दोनों में लिखता हूँ मैं, या हफिंगटन पोस्ट के लिए लिख चुका हूँ, न्यू मटिल्डा। और कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं होती, सियासत पे बातचीत होती है। मैंने काफ़ी काम किया है, जो कैमिलियर्स आए थे ऑस्ट्रेलिया मेरे ख्याल में 1920s में, और उनके बारे में, क्योंकि जितनी उस पर रिसर्च करी जा रही है, ये पता चलते जा रहा है कि उनमें से ज्यादातर जो कैमिलियर थे, वो आज जो पाकिस्तान कहा जाता है, जो मुल्क है, वहां से लोग आए थे, चाहे वो सिंध था, बलोचिस्तान था, खैबर पख्तूनख्वा था, और वगैरह। तो इस पर भी मैंने काफी लिखा है।
बहुत अच्छी बात है, आपसे किसी और वक्त इस पर तफसीली बात होगी, क्योंकि आपने इस पर रिसर्च भी की हुई है बहुत। चलें तो अब आप थोड़ा सा हम पलटते हैं, आपके दूसरे शौक की सुने, आपने कहा आप म्यूजिक भी बनाते हैं, किस किस्म का म्यूजिक है, क्या करते हैं कुछ बात?
जी, तो आज से कुछ 10-12 साल पहले मैं जब मेरी दुबई में रिहाइश थी, तो हमारा रॉक एंड रोल बैंड था, जैसे आपके जो दूसरे अभी आए थे जिन्होंने, जो सूफी नाइट होस्ट कर रहे हैं, उन्होंने कहा था रॉक एंड रोल का तो पाकिस्तान में जब से जुनून आया था,
जुनून आ गया
बिल्कुल। तो उस वक्त हम लोग मतलब बैंड्स थे, जैसे कॉल एक बैंड है, ईपी एंटिटी, पैराडाइम, नूरी वगैरह, इनके गाने कवर करते थे, और अंग्रेजी के भी गाने कवर करते थे। पिछले 4-5 साल में मैं थोड़ा शिफ्ट हो गया हूँ, मैं रैप म्यूजिक मैं करता हूँ, मैं प्रोडक्शन करता हूँ, मैं रैप के गाने बनाता हूँ। मेरा एक गाना पटारी ऐप पे भी है, जो पाकिस्तानी एक बड़ा पॉपुलर सा ऐप है, तो वो इंग्लिश में भी होते हैं, मगर मैं उर्दू में भी रैपिंग करता हूँ, तो वो दोनों साइड से चलता है। जी जी,
तो प्रोड्यूस कैसे करते हैं, कंप्यूटर पे या आप इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, खुद गाते हैं, कोई बैंड है, क्या है?
तो नहीं, इंस्ट्रूमेंट और बैंड तो नहीं है, मैं रॉक बैंड में बेस गिटार बजाया करता था, अब तो खैर वो मैंने छोड़ दिया है, मगर मैं म्यूजिक प्रोड्यूसिंग सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ तो सबसे सिंपल तो है जो मैकबुक पे आता है फ्रूटी लूप्स, सॉरी गैराज बैंड और फ्रूटी लूप्स वगैरह इस तरह के भी हैं, और थोड़े और एडवांस भी हैं एसेट प्रो वगैरह, जिन पे मुझे नहीं इतना मैं नहीं समझता, मगर इनको मैं यूज करता हूँ और सैंपल्स लेता हूँ दूसरे गानों से और उससे बीट बनाता हूँ और उसके ऊपर से फिर मैं लिरिक्स लिख के रैप का पूरा गाना बनाता हूँ।
तो आपसे पहले बात हुई थी, तो क्या हमारे सामिन के लिए आप पसंद करेंगे, उनको सुनवाना पसंद करेंगे, ताकि देखें कि आपकी पसंद कैसी है म्यूजिक में?
सॉरी, क्या
मतलब म्यूजिक के बारे में, कौन सा गाना किस बैंड को?
बिल्कुल, मैं पाकिस्तानी थोड़े कंटेम्प्रेरी बैंड्स अगर देखे जाएं तो मेरा सबसे पसंदीदा बैंड मेरे ख्याल में नूरी बैंड है, जो जिनके दो भाई हैं अली हमजा और अली नूर, और उनका गाना है सारी रात, जो मेरे ख्याल में सीजन 2 या 3 जब कोक स्टूडियो अच्छा हुआ करता था उसमें
कोक स्टूडियो से आपको वो है इस वक्त अब अच्छा नहीं होता
नहीं, मेरे ख्याल में कोक स्टूडियो ने काफी हमारी म्यूजिक मौसीकी इंडस्ट्री, जो पाकिस्तान की मौसीकी इंडस्ट्री, उसको डैमेज किया है।
अच्छा,
आज से 5-6 साल पहले काफी अच्छा था, अब ये है कि वो ही जो आर्टिस्ट एस्टैब्लिश हो चुके हैं, वही जो फनकार हैं, वो जो एस्टैब्लिश हो चुके हैं, उन्हीं को मौका मिलता है, जो नए आर्टिस्ट हैं, जो यंग एंड अपकमिंग आर्टिस्ट हैं, उनको मौका नहीं मिलता इसके लिए। और दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड्स अभी शुरू हुआ है, और पटारी जो खुद अपने जाके छोटे गाँव से और दहेज से लोगों को ढूंढता है और उनको मौका देता है, वो मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छे एवेन्यूज हैं पाकिस्तानी मौसीकी के लिए। कोक स्टूडियो मेरे ख्याल में उसकी प्रोडक्शन क्वालिटी स्टैंडर्ड काफी गिर गया है।
अच्छा चलें, तो मेरा ख्याल है कि ये वक्त है कुछ मौसीकी का। आपने नूरी का तस्करा किया, उनके गाने सारी रात का किया, तो चलें आप भी सुनिए और हम अपने सामिन को भी सुनाते हैं।